کنشنتی. कुमार जीवन 11 मई 1984 पांच ग्रुप्स थे जिनसे बाबा मिल रहे थे, चार हमारे हो गए थे, आज पांचवा अव्यक्त मुरली 11th May 1984 फिफ्थ ग्रुप कुमारों से मुलाकात। सभी विजयी कुमार हो ना, जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम। तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी होना जो बाप की आज्ञा है उसी आज्ञा के प्रमाण कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखे या न रखे, राइट है या रॉन्ग है, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है। नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज करके देते हैं, श्रीमत ही कदम है। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूटे रहेंगे, सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं, कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोलचाल ऐसी हो जो सब पूछे कि यह किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो सेवा हो जाएगी। अच्छा, 11th May 1984 कुमारों से मुलाकात फिफ्थ ग्रुप। बाबा पूछ रहे हैं, सभी विजयी कुमार हो ना, जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा, मेहनत कम होगी, प्राप्ति ज्यादा होगी, सफलता होगी। तो जहां बाप के सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम। इसका मतलब जब मेहनत ज्यादा लग रही है और फिर भी प्राप्ति कम हो रही है तो बाप से किनारा किए हुए हैं, बाप को अंदर ही अंदर भूले हुए हैं। तो मेहनत से छूटने का साधन क्या है, साथ। बाप का कब कब साथ हो, हर सेकंड और हर संकल्प में, हर सेकंड में और हर संकल्प में साथ हो। कितनी ऊंची साधना है। इस साथ में सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी होना ये यहां देखा जाए तो पूरा होता है। फिर दूसरी जो एक बात कही, सफलता के लिए जो बाप की आज्ञा है उसी आज्ञा के प्रमाण कदम हो। पहला तो साथ, दूसरा जो है उसकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा के प्रमाण कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। पर ये कदम कौन सा है, क्योंकि पहली बार कहा साथ हो, अभी कह रहे हैं वो आगे हम पीछे, परंतु ये कदम कौन सा है। यहां कदम रखे या ना रखे, राइट है या रॉन्ग है, धर्म संकट की जब अवस्था आ जाए जीवन में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये राइट है या रॉन्ग है, कदम रखे या ना रखे, यहां जाए या ना जाए, यहां रहे कि घर जाए,
धर्म
यह सोचने की भी जरूरत नहीं है। पर बाबा कह रहे नया कोई रास्ता हो तो सोचना पड़े, रास्ता एक ही है, ओनली वन वे, राम इंटरनेशनल हाईवे। कुछ ही मिनटों में आने वाला है। मंजिल मंजू बहन कितने देर में आने वाली है? कुछ मिनटों में आने वाली है। आज कहाँ है बाबा ने? लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात नहीं, सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो। कदम है श्रीमत, उसके लिए पर श्रीमत पता चाहिए। श्रीमत पता ही नहीं और केवल नारे लगा रहे हैं कि हमें बाप के कदम पर कदम रखना है, फिर कैसे होगा? तो मंजिल समीप है। बाप कितना सहज करके देते हैं, श्रीमत ही कदम है। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो क्या हो जाएगा? मेहनत से छूट जाएंगे। अगर मेहनत बहुत हो रही है तो शायद श्रीमत के कदम पर कदम नहीं है, शायद श्रीमत हम जानते नहीं है, शायद श्रीमत की गहराई को अभी तक समझा नहीं है। सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार तो बहुत सेवा कर सकते हैं, कभी भी मस्ती नहीं करना। छोटों पर बाप का अधिकार ज्यादा है, संडे बोला था ना, और ही ज्यादा स्नेह से कहते हैं हमारा बाप है, परंतु जिम्मेवारी भी है। फिर आपकी चलन बोल चाल छोटे बच्चों की कैसी हो, जो सब पूछे क्या कि यह किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो सेवा हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी विजयी कुमार होना, जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करो तो क्या हो जाएगा? मेहनत कम होगी और प्राप्ति ज्यादा होगी। तो परमात्मा साथ का अनुभव करना, ये जो विजय की बात चल रही है, कौन सी विजय है, कौन सी सफलता और कौन सी विजय? अध्यात्म में विजय, स्पिरिचुअल सक्सेस, अध्यात्म में हमारी विजय होना, अध्यात्म के मार्ग में हमारी उन्नति होना, स्व के चढ़ती कला का अनुभव। तीन प्रकार के उत्साह यहाँ है तो वहां पर उत्सव होगा। उसमें से दूसरे नंबर का कौन सा था संडे की मुरली में? स्वयं की चढ़ती कला का अनुभव। हमें ये अनुभव आंतरिक हो कि हमारी जो कल स्थिति थी उससे आज हम आगे हैं। वो किसी और को नहीं पता चलेगा, वो इतनी सूक्ष्म है कि वो केवल और केवल हमें ही पता है। और अध्यात्म में विजय का या सफलता का एक जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, यहां तो एक तो बात बताई है बाप का साथ, और एक जो नियम है वो है यहां जो भी हम करें उसमें दिखावा ना हो। यहां जो भी हम करें वो हमारा आंतरिक हो और गुप्त हो, हमारा जो अत्यंतिक तीव्र पुरुषार्थ हो वो अतिशय गुप्त हो। एक है बाहर देख रहे हैं सब, सबको दिखाई दे रहा है, परंतु एक पुरुषार्थ वो है जो इतना गुप्त है जो हमारे अतिरिक्त और बाबा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, और वास्तव में वही पुरुषार्थ है। बाकी ऊपर से जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दिखावा है। ये जो साथ वाली बात है ये तो कोई रटने की बात भी नहीं है कि बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारे साथ है, हम दूसरों को बार बार बता रहे हैं कि देखो बाबा हमारे साथ है। ये इतनी सूक्ष्म बात है क्योंकि सब कुछ संकल्पों का है खेल। ये साथ है अर्थात कोई स्थूल तो व्यक्ति है नहीं कि जिसका हाथ में हाथ पकड़ के हम चल रहे, ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे साथ होना ये जो वाक्य है इसको इतनी गहराई से समझना होगा। क्या अब इस समय इस वक्त जब हम यहां बैठे हैं और ये सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो क्या इस समय भी वो हमारे साथ है? स्वयं स्वयं से पूछना है ये प्रश्न। बंगाल में एक मुस्लिम व्यक्ति हुआ था, हाजी मोहम्मद। बहुत बड़ा संत जैसा था, उसे लोग बहुत मानते थे, परंतु उसके अज्ञान काल में अर्थात अभी तक उसने धर्म की ओर वो उन्मुख नहीं हुआ था, उस समय एक रात जब वो हाजी मोहम्मद सोया था, नहीं वो धार्मिक था, पहले से ही धार्मिक था, परंतु एक अलग प्रकार का धार्मिक व्यक्ति था, जो कि तीर्थ यात्राएं कहते थे करता था। उसका नाम ही हाजी मोहम्मद रखा हुआ था। हाजी अर्थात उसने हज की यात्रा कितनी बार की थी? 60 बार, 60 times हज की यात्रा की थी। हज उसने कितनी बार किया था? 60 times। इसके लिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था हाजी मोहम्मद। उसका नाम तो मोमिन या मोशिन कुछ था, मोमिन मोहम्मद, पर लोगों ने उसका नाम रख दिया था हाजी मोहम्मद। तो इस हाजी मोहम्मद ने एक दिन रात में स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैं मर चुका हूं और मरने के बाद दो राहे पर खड़ा हूं, जहां पर एक रास्ता जहन्नुम की ओर जाता है और एक रास्ता बहिष्ट की ओर जाता है, और बीच में एक फरिश्ता खड़ा है। इसे तो इतना विश्वास था कि मैं ऐसा कोई गलत कार्य ही किया ही नहीं जीवन में, सब कुछ किया, इतनी हज की यात्रा की है, हर दिन 5 बार नमाज अदा की है, एक दिन भी मिस नहीं की, तो मेरा तो स्वर्ग बहिष्ट निश्चित है। तो जब उसका नाम आया हाजी मोहम्मद, उसने कहा हाजी, तो उसको फरिश्ते ने कहा यह है नरक का रास्ता। एकदम घबराया, बोलता नरक का रास्ता, जहन्नुम के रास्ते में? उसने कहा मैं हाजी मोहम्मद हूं। फिर से उसने बताया फरिश्ते को, शायद कोई भूल चूक हो गई हो, तो वो कहता है हाँ तुम ही हाजी मोहम्मद। तो बोलता है मैं और जहन्नुम में? तो कहता है हाँ। तो कहता है अरे मैंने तो कितनी हज की यात्रा की। तो बोलता है यही तो कारण है, इसका तुमने बहुत फायदा उठाया धरती पर, ये जो तुम्हारा नाम जो पड़ा है ना हाजी मोहम्मद, इस नाम से तुमने बहुत फायदे उठाए दुनिया में, जहां पर भी गए वहां पर हाजी मोहम्मद, जहां पर भी गए वहां पर हाजी मोहम्मद, इस नाम के आधार से तुमने बहुत फायदे उठाए हैं, तो तुम्हारे तो पुण्य वहां पूरे हो चुके हैं और अभी जहन्नुम बाकी है, और भी कुछ किया है तो वो बताओ। तो और घबरा जाता है। तो कहता है मैंने 5 बार नमाज हर दिन अदा की है, पढ़ी है। तो फरिश्ता कहता है 5 बार तो की है, परंतु जब कोई दूसरे आसपास रहते थे तो तुम ज्यादा समय नमाज पढ़ते थे, और जब अकेले रहते थे तो फटाफट पूरा कर देते थे, और एक बार तो मुझे याद है मैंने देखा भी था तुमको, जब तुम्हारे घर मेहमान आए थे तो तुम पढ़े ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मना तुम्हारे जहन में उस समय अल्लाह नहीं था, परंतु वो लोग थे, उनको दिखाने के लिए तुम ज्यादा समय पढ़ रहे थे, और जब अकेले में होते थे तो सोचते थे कब जल्दी फटाफट पूरा करूं। फरिश्ता पूछता है और भी कुछ है तो बोलो। तो वो इतना घबराता है और उसकी नींद टूटती है, और बस उस स्वप्न के साथ उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद फिर वो उस तरह का धार्मिक व्यक्ति नहीं रहता है जिस तरह का वो था, अजीब प्रकार का व्यक्ति हो जाता है। इसके बाद वो जो भी नमाज अदा करता है छुप छुप के अदा करता है, यहाँ तक कि गांव में खबर फैलती है कि ये काफिर हो चुका है, कुफ्र कर रहा है, नास्तिक बन चुका है, अधार्मिक व्यक्ति बन चुका है, क्योंकि अब तो ये इबादत भी नहीं करता, परंतु एक दिन भी उसने मिस नहीं किया, परंतु अब करता था छुप छुप के, कोई देख ना ले, क्योंकि वो स्वप्न बार बार याद आता था। उस स्वप्न ने जीवन को परिवर्तन कर दिया। विजय का एक नियम है, सफलता का एक नियम है, इस मार्ग में गुप्त हो सब कुछ, जितना दिखावा और आडंबर और दंभ होगा फरिश्ता खड़ा होके बोलेगा फिर एक दिन, ये है जहन्नुम का मार्ग, हम गिनाएंगे उसको कि हमने देखो ये किया था, हम तो इतने इतने बजे उठते थे, इतने इतने बजे मधुबन में बाबा के कमरे में जाते थे, तो बाबा के पास भी पॉइंट्स होंगी। ये भी कहते होंगे कि हम इतने इतने समय पर मुरली सुनते थे, इतना मनन करते थे, इतना बैठकर मुरली का चिंतन मनन करते थे। बाबा कुछ और भी पॉइंट सुनाएगा फिर। फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस, नो शो। फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस है नो डिस्प्ले, नो शो। जो कुछ करना है वो आंतरिक हो, जो कुछ करना हो वो हमारा अपना हो। यहां सबके सामने है तो ट्रैफिक कंट्रोल, और कमरे में है तो कहां का ट्रैफिक कंट्रोल और कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल, कब बजा और कब नहीं पता नहीं। बज भी रहा है पर अपना कार्य जारी है, पर जब मधुबन में है सभी के बीच में है तो बीच सड़क में, चाहे गाड़ी आ रही हो, नशा बहुत चढ़ जाता है नीचे शांतिवन में, जहां है वहीं खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस इज नो शो, नो डिस्प्ले। कैसे इस पुरुषार्थ को गुप्त कर दे? कुछ बातें हैं जो गुप्त नहीं हो सकती, वो तो दिखेगी सबको, वो ठीक है, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो कि गुप्त ही रहे। उन्हीं में उनकी शोभा है और उन्हीं में उनका सौंदर्य है, और वही जो बीज है वही पल्लवित होगा और अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा अंदर ही अंदर। बाहर सबको एक दिन फूल दिखेंगे, उनकी सुगंध आएगी, परंतु वो डायरेक्ट नहीं आई है, बहुत सारा परिश्रम हुआ है। जो बीज हमने डाला है उसे एक जमीन मिलनी चाहिए, जो बीज हमने डाला है उसे वो रोशनी मिलनी चाहिए, उसे खाद मिलनी चाहिए। ये तीन चीजें होगी तो वो बीज जो है फिर अंकुरित होगा। तब तक किसी को दिखता नहीं है, वो इतना वो गुप्त है, सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, फिर धीरे धीरे कलम आएगी। तब तक भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते जब तक फूल ना आ जाए, फल ना आ जाए, परंतु फूल और फूल की वो सुगंध, फल और फल का वो स्वाद और वो पत्ते, ये सब कुछ उस बीज में निहित है, परंतु बीज गुप्त है, उसको गुप्त ही रहने दो। वो बीज है संकल्प का, वो बीज है प्रतिज्ञाओं का, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं इस मार्ग में कि आज से ये करेंगे, उसका कोई दिखावा ना हो, वो इतनी सूक्ष्म हो। अगर चाहते हो कि सब उसे सबको वो पता चल जाए, चलेगा पता। वेट एंड सी, वेट एंड वॉच। जब फल आ जाएंगे और फूल खिल जाएंगे तब सुगंध स्वतः ही फैलेगी। जंगल में फूल खिलता है, गांव वालों के पास जाके नहीं कहता है कि मैं यहाँ खिला हूं, आओ मुझे देखो और मेरी सुगंध लो, स्वतः ही खिंच खिंच कर आत्माएं वहां तक पहुंचती है। तो कहीं पर भी कोई भी दिखावा ना हो, जो हमारा अत्यंतिक पुरुषार्थ हो, आंतरिक पुरुषार्थ हो, अभ्युदय पुरुषार्थ, इन्नर मोस्ट पुरुषार्थ हो, वो संपूर्ण गुप्त हो। जो भी आदत हमको बनानी है, नई आदतें, नई लीख क्रिएट करनी है, वो सब कुछ गुप्त हो और उसकी पालना होती रहे अंदर ही अंदर, उसका पोषण हम करते रहे। तो कहीं जैसे यही संकल्प है कि बाप साथ है, केवल एक छोटा सा संकल्प है। ये संकल्प अगर हम सोचे कि आज हम इस संकल्प की ही प्रैक्टिस करेंगे कि जीवन में या सारे दिन भर उसके साथ का अनुभव, इसमें कहीं पर भी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आदत बना लेंगे। वो कैसे? संकल्प अगर कर लो तो बाद में आगे का अपने आप खुल जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में, जैसे हम किसी से कुछ लेने गए उसने दिया नहीं, तुरंत घृणा भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद दिन भर में उस व्यक्ति के साथ मिलना है, बार बार उसके साथ क्या करना है वो हम सोचते नहीं, स्वतः ही निगेटिव अपने आप होता है। सोचते हैं हम कि वो हमारे पास आएगा तो हम उसको नहीं देंगे, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं। वो हमसे आकर बात करेगा और कुछ पूछेगा तो हम उसे ठीक से बात नहीं करेंगे, सोचनी पड़ता है निगेटिव के लिए, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। एक संकल्प आ गया, अपने आप गाड़ी चलने लगती है उसके, उस पटरी पर आप ही चलती है। वैसे ही जैसे वो निगेटिव में होता है वही नियम इधर भी लागू है। यदि हम संकल्प कर ले कि बाप साथ है हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, आज जो दिन भर में होगा हमें पता नहीं आज क्या होगा, किसके साथ कौन सा हिसाब किस जन्म का और किस व्यक्ति के द्वारा सामने आके खड़ा हो जाए हमें पता नहीं, कौन से मित्र शत्रु बन जाए और कौन से शत्रु मित्र बन जाए, हम नहीं बता सकते। इतना सब कुछ अनिश्चित है यहाँ पर, इतना सब कुछ अनिश्चित है, परंतु जो भी होना है वो बाहर की परिस्थितियां है। हमारी आंतरिक परिस्थिति ये हो, हमारी आंतरिक स्थिति ये हो कि वो हमारे साथ है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है, इसमें कोई रोक सकता है कोई, इसको तो नहीं रोक सकता। बाहर की स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहेगी पर इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको आदत बनानी है। आदत ऐसी चीज है, ऐसी चीज है कि वो हर समय कार्य करती है। अगर वो बन जाए तो परिस्थितियों में भिन्न भिन्न है तो भी आदत काम करती है। जैसे वो दिखाए ना, कोई व्यक्ति बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है, 105 डिग्री बुखार, परंतु उसको चेन स्मोकर है। पहले का चेन स्मोकर होते ना, एक एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 सिगरेट पीने वाला, ऐसा वो व्यक्ति है। अब एक दिन बीमार पड़ा, इतना बीमार, इतना 105 डिग्री बुखार है, थोड़ा सा बेहोश है, उठाओ तो उठता नहीं है, सेमी कॉन्शियस, ड्राउजी, बिल्कुल उसको कुछ बात नहीं कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर गिरने के लिए थर्मामीटर रखा गया उसके मुंह में तो कहता है माचिस प्लीज क्योंकि क्या है आदत उसकी उस स्थिति में भी काम कर रही है, जो बाकी स्थिति में कोई पहचान भी नहीं रहा है। हाँ, वो अटेंशन वाला भी बताया था एक बार। तो आदत ऐसी चीज है कि बेहोश है तो भी व्यक्ति अपनी उस आदत को नहीं भूला है। जैसे ही थर्मामीटर रखा उसे याद आया क्या है, माचिस चाहिए उसे, इतनी ये आदत। तो वो आदत वहां जैसी पक्की है वही नियम यहां पर भी कर लो। कोई भी नियम, कोई भी आदत, कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ द हैबिट्स, वो तो अपने आप बन गई, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। चलो अपने आप बन गई उसका कुछ कर नहीं सकते, पर आदत तो आदत है, चाहे वो अपने आप बन रही है चाहे बनाओ, परिणाम सेम रहेंगे उसके। अमृत वेले उठ नहीं सकते पर यदि आदत बना दी तो परिणाम वही होंगे, स्वतः ही होंगे उसका, जो उसके परिणाम है, फायदे है, वो स्वतः ही उस व्यक्ति को मिलने लगेंगे क्योंकि आदत बनी है। समय अमृत वेले का श्रेष्ठ समय है, स्वतः ही श्रेष्ठ संकल्प मन में आएंगे, स्वतः नई नई ज्ञान की पॉइंट्स मन में आएगी। हमें भी नहीं पता ये कहां से आ गई, आसमान से उतरेगी, अवतरण होगा नई ज्ञान की पॉइंट का, और मन में जैसा एक प्रकाश लाएगा। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं ये सारी बातें, परंतु जिस तीव्र वेग से और तीव्र गति से और जिस समय वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, एक नया आलोक आएगा, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग। सभी विजय कुमार होना, जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा, फिर मेहनत कम होगी परंतु संकल्प करना पड़ेगा, और इस संकल्प को बार बार करने से क्या हो जाएगा, फिर वो पगडंडी तैयार हो जाएगी, रास्ता क्रिएट हो जाएगा। लिख प्राप्ति ज्यादा, बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम। जैसे कहा कि यदि मेहनत बहुत लग रही है फिर भी सफलता नहीं हो रही है तो शायद बाप से बहुत दूर है। ऊपर से तो आ रहे हैं मधुबन में, बैठ रहे बाबा के कमरे में घंटों तक, बाबा के कमरे में है पर मन कहीं और है। क्लासेस में मुरलियों में बैठ तो रहे परंतु केवल शरीर बैठा है, मन विश्व परिक्रमा कर रहा है, अतीत में भटक रहा है, अतीत की गलियारियों में और भविष्य की चिंता में, वर्तमान में नहीं है। तो मेहनत से छूटने का साधन क्या है? फिर बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जो स्वतः हो जाती है, कुछ करनी पड़ेगी। कुछ आदतें ऐसी है जो स्वतः आ जाती है, ये आदत डालनी पड़ेगी। इस साथ में सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथ ही होना, जो बाप की आज्ञा है उसी आज्ञा के प्रमाण कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहां कदम रखे या न रखे, राइट है या रॉन्ग है, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते, टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर का हेमलेट कहता है, टू बी और नॉट टू बी, समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या करूं और क्या नहीं, ये करूं या वो करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करूं या नहीं ज्वाइन करूं, दोस्ती इससे बढ़ाऊं या रोक दूं अभी यहीं पर, क्या करूं, संपर्क बढ़ाऊं कि रोकूं, चलूं या न चलूं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। नया कोई रास्ता हो तो सोचना पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात नहीं। परंतु वो कदम क्या है? श्रीमत सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो तो मंजिल समीप है। बाप कितना सहज कर देते हैं, श्रीमत ही कदम है। तो ये एक दूसरी पॉइंट है इस पैराग्राफ की, पहली विजय की, और दूसरी है श्रीमत। श्रीमत क्या है? व्हाट इज श्रीमत? श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है? ये तीन क्या क्या है, इसको कैसे डिवाइड करें? ये हम क्या कह सकते हैं निश्चय से कि ये श्रीमत है, ये परमत है और ये मनमत है? ये हमारे जीवन में समस्या है। हमने सोचा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अब ये डिसाइड कैसे किया जाए कि ये मत है, ये हमारी मनमत है, ये परमत है या फिर श्रीमत है? इन तीनों को डिवाइड करते आ जाना चाहिए। उसके लिए श्रीमत क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक ही आधार है श्रीमत को जानने का, वो है मुरली। जब तक स्वयं को इसी मुरली में डुबोए नहीं रखेंगे और स्वयं को भिगो नहीं देंगे इस बारिश में, तब तक वो पता भी नहीं चलेगी। एक और सूक्ष्म बात है कि हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। ये उत्तर हमारे ही अंदर से आएगा। कई लोगों को बहुत आदत होती है प्रश्न पूछने की, बहुत प्रश्न पूछते हैं, परंतु एक बात की यहां गलती है, हमारे प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, कोई नहीं। यहां तक बाबा के सामने भी हम चले जाए और बाबा से पूछे क्या करे, ये करे कि वो करे, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करो कि वहां से भी उत्तर आएगा। उत्तर अंदर से ही आना है, फाइनल आंसर जो है वो हमारे ही अंदर से आना है। वो अलग बात है हम बाबा से राय ले, प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाना और बाबा की टचिंग उसमें आ जाना, क्लीन बुद्धि हो या योग हम बढ़ाए, परंतु उत्तर जो आना है इस जीवन के प्रश्नों का वो अंदर से ही आएगा, चाहे कितनों को कितने भी बार पूछे, क्योंकि वो जो बता रहे अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे, अपने चिंतन के आधार से बता रहे। इसके लिए जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो अंदर से आएगा, पर ये अंदर से आने के लिए उतना अंतकरण को शुद्ध करना होगा, परिष्कृत करना होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द चित्त। ये जो चित्त है इसका इतना शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए फिर योग करो, जो करना है करो। कुछ दिन पहले किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जीवन में धर्म संकट है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस स्थिति में ब्राह्मणों ने क्या करना चाहिए। कौन सा ब्राह्मण? तीव्र पुरुषार्थी है वो, साधारण पुरुषार्थी भी नहीं है वो, संपूर्ण तीव्र पुरुषार्थी, जिसका बैठ के ही योग का चार्ट 3 घंटे के ऊपर है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न है कि जीवन में ऐसी एक बात आई है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। श्रीमत सारी पता है, संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में है, योग भी बहुत श्रेष्ठ है, चिंतन भी बहुत श्रेष्ठ है, पवित्रता एकदम शिखर पर है, तो क्या करना चाहिए? किसी ने हमसे यह प्रश्न पूछा था और सब उस आत्मा को जानते थे हैं, पर हम नाम नहीं बताएंगे। और इसी क्लास की एक आत्मा है, हमने उनसे कहा था कि सबसे पहले तो इस संकल्प को न्यूट्रलाइज कर देना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है, उससे नुकसान क्या है। 7 दिन तक केवल फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन, और अपने आप को प्लेन कर देना है, प्लेन बुद्धि, करना भी नहीं, नहीं भी करना, इन दोनों ही संकल्प से परे इतना स्वयं को प्लेन करना है, क्योंकि हम करें तो करने के बाद पता चलेगा नहीं करना चाहिए था, फिर पश्चाताप। अगर नहीं करे, नहीं करने के बाद पता चलेगा कि करना चाहिए था, फिर पश्चाताप, या फिर हम पश्चाताप करेंगे या दूसरे कहेंगे, देखा ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राय देने वाले बैठे हैं आसपास फ्री में। इसके लिए फर्स्ट 7 डेज जस्ट न्यूट्रलाइज, और फिर अमृत वेले जब योग करोगे तो वो जो स्थिति है परम धाम की, केवल बीज रूप अवस्था, वहां पर वो संकल्प इमर्ज करो, और वहां जो उत्तर आएगा वो समझना फाइनल आंसर है। और उत्तर आने के बाद फिर ऐसा समझो कि वो दूसरा जो ऑप्शन था वो है ही नहीं, बस यही ऑप्शन है, चाहे अब इसमें जो होना है होने दो, फायदा है नुकसान है जो है, इसको ये समझो कि ये ऊपर से आया है उत्तर, ये हमारा भी उत्तर नहीं है। परंतु उसकी पहले तैयारी 7 डेज, उसके बाद में कुछ दिन पावरफुल योग, और वो योग में उस पावरफुल स्थिति में वो संकल्प इमर्ज करना, उसमें जो उत्तर आएगा वो शायद हो सकता है बाबा की टचिंग है, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण जो भी कहते हैं ना, बाबा के कमरे में जाए तो ये टच हुआ, परंतु वो टचिंग कम रहती है, हमारे ही जो बायस है, पूर्वाग्रह है, उस अनुसार वो निर्णय होता है। हमने पहले ही सोच के रखा है कि नहीं करना है, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हम बाबा के कमरे में जाते हैं, अभी बाबा ने कहा है नहीं करना है, पर सोच चिट्ठी इसमें बहुत बार होता है कि हमारी ही सोच सब चीजों को प्रभावित करती है। हम ये कैसे माने कि ये ऊपर से अवतरित हुआ है? न्यूट्रलाइजेशन, 0 स्टेज, निरसंकल्प स्थिति, और उसमें उस संकल्प का अवतरण, और उसके बाद में फिर उसको चुन लिया, और ऐसा चुन लिया कि नेक्स्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, ओनली 1 ऑप्शन एग्जिस्ट, और उसको हमने चुना है। तो श्रीमद को जानना, और श्रीमद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भीगना पड़ेगा इस बारिश में, सस्ती सुंदर और टिकाऊ बारिश, जो कि मुफ्त में निरंतर बरस रही है। तो श्रीमद के कदम पर कदम रखना, तो मेहनत से छूट जाएंगे, सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी, और छोटे कुमार या कुमारी भी है इधर एक, भी बहुत सेवा कर सकते, कभी भी मस्ती नहीं करना, कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोल चाल ऐसे हो जो सब पूछे कि किस स्कूल में पढ़ने वाली हो, ठीक है ना, तो सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।